नमस्कार भारत, तारीख 18 जून, दिन सोमवार, मैं हूँ मानसी दास। इसराइली सैनिकों का वीडियो बनाना होगा अपराध, देश की कैबिनेट में नए विधेयक पर चर्चा। आज से शुरू हो रही है ट्रक ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल।
हमारे भाड़े बढ़ते नहीं, हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आज हर मोटर मालिक जो है परेशान है।
साथ ही सुनेंगे पाकिस्तान से वसीतुल्लाह खान की डायरी।
भाई जी, नेहरू जी की अस्थियां तो पाकिस्तान नहीं भेज देंगे, जिन्होंने 6 में से 3 दरियाओं पे पाकिस्तान का हक मान लिया था।
होंगी अन्य खबरें और खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। अफगान तालिबान ने ईद के लिए घोषित किए गए 3 दिन के संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान से संघर्ष विराम की मियाद बढ़ाने की अपील की थी। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा है कि संघर्ष विराम रविवार रात को खत्म हो जाएगा और सुरक्षा बलों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। आज मिल रही खबरों के मुताबिक संघर्ष विराम खत्म होने के बाद हेलमंड और कंधार प्रांतों में तालिबान ने अफगानी सुरक्षा बलों पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। सुरक्षा बलों को इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो अपनी रक्षा के लिए पूरी कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले अफगान सरकार और तालिबान की तरफ से ईद के लिए 3 दिन का संघर्ष विराम घोषित किया गया था। कोलंबिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता इवान डुके जीत गए हैं। उन्हें 54% वोट मिले हैं। वहीं उनके प्रतिद्वंदी वामपंथी पूर्व लड़ाके गुस्टोवा पेट्रो को 41% वोट हासिल हुए हैं। डुके पिछली सरकार के मार्क्सवादी विद्रोहियों के साथ किए गए शांति समझौते के पक्ष में नहीं हैं। वो इसकी फिर से जाँच कराना चाहते हैं। डुके विद्रोहियों यानी रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के लिए ज़्यादा सख्त सजा लाना चाहते हैं। इसके उलट गुस्टोवा पेट्रो शांति समझौते के समर्थन में थे। ये समझौता मौजूदा राष्ट्रपति खुआन मैनुअल सेंटोस के कार्यकाल में किया गया था। अभी समझौते के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। FARC को लेकर गुस्टोवा पेट्रो ने कहा, हमें 60 साल पुराने युद्ध से निकालने के लिए जो समझौता सेंटोस ने किया था, वो देश को FARC तक नहीं ले गया। वो हमें लोकतंत्र की संभावनाओं तक लेकर गया। आपको मानना होगा कि लाखों कोलंबियाई लोगों के साथ धोखा हुआ है, और इस पर आप कभी संदेह नहीं कर सकते कि देश की भलाई शांति में ही है। ये थे कोलंबियाई नेता गुस्टोवा पेट्रो के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। रूस में हो रहे फुटबॉल विश्व कप में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मेक्सिको ने मौजूदा चैंपियन जर्मनी को 1-0 से मात दे दी। लोगों के लिए मैच इसलिए भी हैरानी भरा था क्योंकि जर्मनी 4 बार विश्व कप विजेता रह चुका है और मेक्सिको ने 1 बार भी विश्व कप नहीं जीता है। ये ग्रुप एफ का पहला मैच था। लुजिंसी स्टेडियम में हुए इस मैच में मेक्सिको के हीरो रहे इरविंग लोजानो, उन्होंने एक निर्णायक गोल लगाकर जर्मनी पर जीत हासिल की। इसके अलावा हुए मैचों में ब्राजील और स्विट्जरलैंड का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। वहीं सर्बिया ने कोस्टा रिको को 1-0 से हरा दिया। लीबिया के नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन ने रास लानुफ में स्थित पूर्वी बंदरगाह पर लगातार जल रहे 2 बड़े तेल भंडारण टैंकों के चलते पर्यावरण संबंधी खतरे की चेतावनी दी है। एक लड़ाई के दौरान इन टैंकों में आग लग गई थी। कॉरपोरेशन ने लीबियाई सेना के नेता जनरल खलीफा हफ्तार के खिलाफ सुरक्षा बलों की तुरंत वापसी की मांग की है। खलीफा हफ्तार की अपनी लीबियाई नेशनल आर्मी साल 2016 से क्षेत्र के तेल उत्पादन को नियंत्रित करती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। एक विरोधी गुट पेट्रोलियम फैसिलिटीज गार्ड ने गुरुवार को हमला शुरू कर दिया था। पटना पुलिस ने रविवार की रात शाम शराब रखने के आरोप में एक चीनी नागरिक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के अनीसाबाद इलाके में स्थित एक निजी अपार्टमेंट में चीनी नागरिकों के कमरे से शराब की बोतलें बरामद की। इनमें से एक का सेवन भी हुआ है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अपार्टमेंट में शराब की पार्टी चल रही है। इसी जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। नए शराबबंदी कानून के तहत किसी भी तरह की शराब का सेवन, इसे अपने पास रखना, इसकी खरीद बिक्री दंडनीय अपराध है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। इसराइल की कैबिनेट में एक ऐसे विधेयक पर चर्चा हो रही है जिसके तहत कुछ खास हालातों में इसराइली सेना के जवानों की तस्वीरें लेना और वीडियो बनाना अब कानूनन अपराध माना जाएगा। इस नए विधेयक को लेकर मानवाधिकार समूह चिंता जता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में सैनिकों के मानवाधिकार हनन के मामलों को दुनिया के सामने लाने के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता कई बार उनके वीडियो बनाते हैं। हाल में एक घायल फिलिस्तीनी व्यक्ति की हत्या के आरोप में एक सैनिक को दोषी पाया गया था, जिसके आधार पर सैनिक को सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब इसराइल में एक नए विधेयक पर चर्चा हो रही है जिसके अनुसार ऐसे वीडियो बनाने वालों को जेल की सजा देने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे सेना का मनोबल कम हो सकता है। इसराइली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के मीडिया जानकार डॉक्टर ताहिल श्वार्स अलशुलर ने कहा कि इस प्रस्तावित कानून में कई समस्याएं नजर आ रही हैं।
इट्स एंटी डेमोक्रेटिक।
पहले तो ये गणतंत्र के खिलाफ है। गणतंत्र में आप लोगों की तस्वीरें लेने, वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करने से नहीं रोक सकते। ऐसा नहीं होने पर गणतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो जानकारी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। दूसरा ये कि ये व्यवस्था कारगर नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसे वक्त जब हर कहीं निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर पुलिस वाले या सैनिक के पास अपने कैमरे हैं, ऐसे में आप नागरिकों को तस्वीर लेने से मना कर दें तो ये पक्षपात करने जैसा है। डॉक्टर ताहिला श्वार्स अलशुलर के शब्द। एक फिलिस्तीनी नागरिक के चाचा फतेही अल शरीफ ने इस विधेयक की आलोचना की है। शरीफ के भतीजे को एक इसराइली सैनिक की गोली लगी थी जिससे वो घायल हो गए थे। अब वो किसी के वीडियो बनाने और उनकी तस्वीरें लेने से भी लोगों को रोकना चाहते हैं, और ऐसा करने वाले को अपराधी करार देकर 5 से 10 साल के लिए जेल में डाल देना चाहते हैं। वो हत्या करने वाले को तो 18 महीने की सजा दे रहे हैं और सच्चाई छापने वाले को 10 साल तक की जेल देना चाहते हैं। एक परिवार के तौर पर वो जितनी सच्चाई छिपाने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही सच्चाई सामने लाने के लिए अलग अलग तकनीकी रास्ते तलाशने की कोशिश करेंगे। फतेही अल शरीफ के शब्द। इधर इसराइली सरकार के इस नए विधेयक के बारे में इसराइली मानवाधिकार कार्यकर्ता चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि मामला सच्चाई को कैमरे में कैद करने का नहीं है, बल्कि इस सच्चाई का है कि सरकार असल में क्या करना चाहती है। इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी के प्रवक्ता अमित गलुत्स कहते हैं कि इसराइली सरकार को अगर इसके दुनिया के सामने आने से शर्म आती है तो उसे इन इलाकों में इसराइली कब्जे को खत्म करना चाहिए और फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो अपराध किए जा रहे हैं उन्हें बंद करने की दिशा में काम करना चाहिए।
रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
रुख करते हैं भारत का, जहां डीजल की बढ़ती कीमतों, टोल टैक्स और बीमे के प्रीमियम में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे ट्रक ऑपरेटर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। यह हड़ताल ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन यानी एकोगोआ ने बुलाई है। हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने एकोगोआ के महासचिव राजेंद्र सिंह से संपर्क किया और पूछा कि आखिर हड़ताल पर जाने की नौबत क्यों आन पड़ी।
ये हमारी ऑल ओवर इंडिया की एपेक्स बॉडी है, जिसके अंदर में पूरे कंट्री से जो एसोसिएशन हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे पास में बस वाले या और कोई नहीं है। और आज का जो मुद्दा है, पिछले एक साल से डेली के डीजल प्राइस से ट्रकर को प्रभावित हो रहा है, टोल टैक्स की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारे जो मोस्टली कर्नाटका स्टेट है, तमिलनाडु है, बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। हमारी जो स्ट्राइक है वो इश्यू बेस है, जिसके अंदर में तकलीफ है। और हमारा ये मानना है कि जो भी गाड़ी वाला इससे तकलीफ के अंदर में है वो सब इसके अंदर में भाग लेंगे।
आपका मतलब क्या दावा है कि कितनी बड़ी संख्या में ट्रक इसमें शामिल होंगे, कितना असर इसका हो पाएगा?
गाड़ियाँ तो हिंदुस्तान में 81 लाख है। डीजल के साथ में प्रभावित हर एक आदमी है। टोल टैक्स हर एक आदमी को लगता है, हर गाड़ी वाला फील करता है कि उसकी जो डबल लिया जाता है 8 रुपए लीटर के अंदर में हमारे से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लिया जाता है। एक 10 टायर की जो गाड़ी है उसके अंदर में 8 रुपए किलोमीटर का फिर टोल चार्जेस लग जाते हैं। ये डबल डबल टैक्सेस दे रहे हैं, हमारे भाड़े बढ़ते नहीं, हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आज हर मोटर मालिक जो है परेशान है। गवर्नमेंट को अगर खर्चे बढ़ाने हैं तो प्रोटेक्शन भी कुछ देनी चाहिए कि हाँ भी मिनिमम फ्रेट रेट इतना होना चाहिए।
जी रजिंदर जी, लेकिन सरकार तो ये कहती है ना कि डीजल और पेट्रोल के दाम तो अब कंपनियां तय करती हैं और वो बाजार के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, तो आपकी नाराजगी सरकार की नीतियों से है?
जब यूपीए को 2014-15 में $110 के ऊपर में रेट था तो यहाँ पर आज से सस्ता डीजल बिक रहा था, जो अपने पक्ष में आज रेट बढ़े हैं ये 9 टाइम जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उसकी वजह से है। ये सारी हमारी कास्ट तो हमारे ऊपर में आ रही है।
खान पान का जो सामान है भारत में, सब्जियां और फल हैं, सब ट्रकों के जरिए पहुंचाए जाते हैं यहाँ से वहाँ। आपकी केंद्र सरकार से जो शिकायतें हैं उसके लिए आप हड़ताल कर रहे हैं, अगर वो मान लीजिए कई दिन जारी रह गई तो उसका नुकसान तो आम जनता को ही होगा ना?
नहीं सर जी, हमने जो एसेंशियल आइटम्स हैं, दूध है, सब्जियां हैं, ऐसी चीजों को हमने अपने स्ट्राइक में अभी ऐड नहीं किया है। हम जनरल पब्लिक की सपोर्ट चाहते हैं, हम जनरल पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते।
झारखंड में भूमि अधिग्रहण कानून में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर आज एक बैठक करने वाला है। विपक्ष का मानना है कि सरकार आदिवासियों की जमीनें कॉरपोरेट कंपनियों को देने के लिए संशोधन कर रही है, वहीं झारखंड सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि विकास के लिए संशोधन करना जरूरी है। सुनिए रांची से रवि प्रकाश की ये रिपोर्ट।
भूमि अधिग्रहण कानून का बोतल में बंद जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। इसकी शुरुआत 2 दिन पहले हुई, तब स्थानीय मीडिया ने झारखंड सरकार के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून 2017 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की खबरें प्रसारित की और देखते ही देखते राज्य के आदिवासी आंदोलित हो गए। आदिवासियों के विभिन्न संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। आज झारखंड बंद रखने की भी घोषणा की गई है। आदिवासी सिंगल अभियान के प्रमुख और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने बीबीसी से कहा कि झारखंड की भाजपा सरकार कॉरपोरेट कंपनियों से किए गए अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए यह विधेयक लेकर आई है।
ये कानून हमारे लिए एकदम डार्कोनियन कानून है, जमीन लूट का कानून है, जमीन जबरन लूट कर कॉरपोरेट को देना है, चूंकि यहाँ खनिज पदार्थ आदि है ज्यादा। हम लोग को लगा कि बंदी करके 1-2 दिन में तो विरोध दर्ज कर देना चाहिए।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्य सरकार पर आदिवासियों की जमीनें छीनने की साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए सरकार को 24 घंटे की मोहलत दी थी, अब इसकी मियाद खत्म हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष एकजुट है और 18 जून को विपक्ष की साझा बैठक में आगामी आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
सरकार को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि जल जंगल जमीन इस राज्य की आत्मा रही है। अगर इस पर किसी भी तरीके का सरकार ऐसे निर्णय लेती है जिससे यहाँ के जल जंगल जमीन पर असर डालता है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग इसके लिए भले ही जान जाए लोग परवाह नहीं करेंगे।
झारखंड सरकार का कहना है कि विपक्ष इस मसले पर संजीदा नहीं है। राज्य के भूमि राजस्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने मुझे बताया कि विपक्ष के तमाम आरोप गलत हैं। उन्होंने बताया कि जमीनों के अधिग्रहण में सोशल इंपैक्ट सर्वे की बाध्यता सिर्फ सरकारी परियोजनाओं के लिए खत्म की गई है। विपक्ष का यह कहना कि इसके जरिए आदिवासी जमीनें कॉरपोरेट कंपनियों को दे दी जाएंगी बिल्कुल गलत है।
अधिग्रहण के जो प्रक्रिया रहेगी पेशा क्षेत्र में कानून पहले जैसा ही रहेगा, उसमें सोशल इम्पैक्ट से लेकर सारी चीजें होगी। तीसरा, हम लोग ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजनाओं के लिए, कहीं भी आपको जो लोग यह दिखा रहे हैं कि जमीन छीन लेगा, पब्लिक सेक्टर को देगा, बिल को उनको पढ़ना चाहिए। और इसका जो भी स्केल होगा वो लार्ज नंबर ऑफ लैंड का आपका एक्विजिशन नहीं होगा।
दरअसल झारखंड सरकार साल 2017 के मानसून सत्र के दौरान भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का विधेयक लेकर आई थी, तब विपक्ष के विरोध को अनसुना कर सरकार ने विधानसभा से इसे पारित भी करा लिया, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस पर आपत्तियां लगाई और यह विधेयक झारखंड सरकार को वापस कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने अपने स्पष्टीकरण के साथ इसे पुनर्विचार के लिए दोबारा भेजा। अब राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को मंजूरी मिल जाने की चर्चा है, हालांकि भू राजस्व मंत्री ने इस संबंधित किसी भी आधिकारिक सूचना से इनकार किया है। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आप में से कई लोगों ने अक्सर अपने घर या दफ्तर में किसी परिचित के बेटे या बेटी के रूस जाकर पढ़ाई करने के बारे में जरूर सुना होगा, खासतौर के मेडिसिन की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने वालों के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीते कुछ सालों में ये सिलसिला धीमा पड़ता गया है? ऐसा क्यों हुआ है, ये पड़ताल की बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने, और मॉस्को से उन्होंने भेजी ये रिपोर्ट।
मेरठ की रहने वाली भामिनी को अब रूस में 3 साल हो चुके हैं। पहले साल रूसी भाषा सीखी और 2 साल से मेडिकल की पढ़ाई चल रही है। यहाँ आकर पढ़ने का इनका सपना तो पूरा हो रहा है, लेकिन एहतियात भी बरतने पड़ रहे हैं। भामिनी ने बताया,
सबसे बड़ी बात है खुद से अपना ख्याल रखना है, सेफ्टी का। ना यहाँ फैमिली नहीं है, यहाँ हमारे पेरेंट्स नहीं है, हमारा खुद का घर नहीं है, तो अपने आप रहना है और खुद से डील करना है किससे क्या बात करनी है, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिशेज वॉश करने, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट ये कैपिटल है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री का कैपिटल है, तो इट कैन नॉट बी 100% सेफ। तुम्हें 55 से ज़्यादा है तो तुम्हें, लेकिन
अभी फिलहाल एक ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय छात्र रूस में मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आते थे, लेकिन समय के साथ छात्रों ने अमरीका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का रुख करना शुरू कर दिया और रूस इस रेस में थोड़ा पिछड़ सा गया। रशा आकर पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स में से आज भी 90% मेडिसिन की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस तादाद में ज़बरदस्त गिरावट आई है। भाषा की मजबूरी के अलावा एक बड़ी वजह एजुकेशन एजेंट्स पर कम होता भरोसा है। आज भी दुनिया के दर्जनों देशों के छात्र रूस में मेडिकल की पढ़ाई करने आते हैं। वजह है पढ़ाई का थोड़ा सस्ता होना या फिर दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ी आसानी से एडमिशन मिलना। बावजूद इसके पिछले कुछ सालों में कई भारतीय छात्रों के तजुर्बे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। विशाल शर्मा रूस में इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ऐसे कई मामलों से गुजर चुके हैं। विशाल ने बताया,
मेडिकल स्टूडेंट जो हैं मोस्टली इंडिया से सभी कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं। सभी का यही इशू रहता है कि वो कहीं ना कहीं धोखे में रहते हैं, उनको धोखे में रखा जाता है, एक अच्छी फुल इंफॉर्मेशन फुल गाइडिंग के गाइडलाइंस के साथ नहीं भेजा जाता है, जो चीज़ उन्हें बोली जाती है वो चीज़ नहीं होती है रियलिटी में। तो वो यहाँ पर आके अपना बैगेज लेके खड़े हुए होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि आगे एडमिशन प्रोसीजर क्या है।
वर्ष 2017 में करीब 125 भारतीय छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई छोड़ भारत वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उन्हें यहाँ आकर पता चला कि पूरी पढ़ाई रूसी में ही करनी पड़ेगी। जाहिर है मामला सरकारों तक भी पहुँचा है। रूस में भारत के राजदूत पंकज सरन ने हमसे इसकी वजह बताई।
जैसे आपने जिक्र किया है कि जब सोवियत संघ के ज़माने में बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट यहाँ होते थे, पढ़ते थे, बीच में ज़रूर थोड़ा एक गिराव आया है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2-4 सालों में बढ़ोतरी हो रही है। बेसिकली इंफॉर्मेशन गैप दोनों देशों में है और इसको हमें कम करना है। दूसरा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भाषा पे आता है, क्योंकि यहाँ पे जो सारी जो पढ़ाने का काम है वो सब रूसी में है। तीसरा ये है कि अभी भी हमारे जो दोनों सरकारों के बीच में डिग्री रिकग्निशन अभी नहीं हुआ है, तो इससे भी थोड़ा सा हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, झिझकते हैं आने में।
पराए देश में रहने के अलावा एक आखिरी लेकिन बड़ी चुनौती भी है ऐसे हजारों छात्रों के सामने जो यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रूस में डॉक्टर बन भारत में काम करने के लिए अपने देश में ही एक और परीक्षा इनका इंतजार कर रही है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी मॉस्को।
और अब जानते हैं कि क्या कुछ छपा है आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में। अखबारों के पन्ने पलटकर कमलेश स्टूडियो में आ गई हैं। बताइए कमलेश, क्या है आज की बड़ी सुर्खियां?
मानसी, हम टाइम्स ऑफ इंडिया में हम देख सकते हैं जैसे केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच, अरविंद केजरीवाल उनके बीच जो मामला चल रहा है वो इसमें दिया गया है, बताया गया है कि कैसे सड़क पर उतर आया है ये मामला। केजरीवाल उनके साथ अपने समर्थकों के साथ गए थे प्रधानमंत्री आवास तक, उनको रोक लिया गया संसद मार्ग पर। वही 4 मुख्यमंत्रियों ने मिलकर पीएम से मुलाकात की है और कहा है कि दिल्ली के मामले को सुलझाया जाए। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर है कि रमजान के दौरान जम्मू कश्मीर में जो सीज फायर संघर्ष विराम रोका गया था, अब वो फिर संघर्ष विराम लगाया गया था वो अब फिर हट गया है और अब देखना है कि आगे क्या होता है वहाँ पर। एक हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में है, दिल्ली वालों के लिए बहुत राहत की खबर है कि 29 जून तक मानसून यहाँ पहुँच जाएगा। जो माहौल चल रहा था गर्मी है अब हम लोग सब देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अब थोड़ी राहत हो सकती है
जी।
और जी,
और कोई और खबर
जी एक हम...
एक खबर मैं भी बता देती हूँ श्रोताओं को। माउंट एवरेस्ट पर कचरा फैला रहे हैं धनी पर्वतारोही, ये खबर छापी है जनसत्ता ने। जनसत्ता का कहना है कि पर्वतारोही टेंट, बेकार उपकरण, खाली गैस सिलेंडर पहाड़ के ऊपर छोड़ आते हैं और अब माउंट एवरेस्ट में टनों कचरा जमा हो गया है।
एक खबर हम दैनिक जागरण में देख रहे हैं, यहाँ कांग्रेस की तरफ से कहा गया नीतीश लौटे तो महागठबंधन संभव। ये विपक्ष एक तरह से इकट्ठा हो रहा है और हम बिहार से नीतीश कुमार को भी अपनी तरफ लेने की कोशिश हो रही है। इसमें कहा गया है, जो पार्टी प्रवक्ता बिहार में कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा ऐसी संभावना उभरी तो हम निश्चित तौर पर अपने सहयोगी दलों से विचार विमर्श करेंगे अगर नीतीश कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताते हैं तो।
जी धन्यवाद कमलेश। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम का, यानी पाकिस्तान से वसतुल्लाह खान की डायरी सुनने का।
कभी ब्रिटिश इंडिया के गद्दारों मगर देशभक्तों की नज़र में हीरो दिखने वाले हिंदुस्तानियों को सज़ा के तौर पे काले पानी भेजा जाता था। फिर ना भारत में अंग्रेज़ रहे, ना जजायर अंडमान के काले पानी की जेल। अब खतरनाक बंदियों को यहीं कहीं नागपुर या दिल्ली की तहार जेल में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, एक नया काला पानी दरियाफ्त हो गया है और इसका नाम है पाकिस्तान। शाहरुख खान को फलां बात करने की जरूरत कैसे हुई, इसे पाकिस्तान भेज दो। आमिर खान की पत्नी किरण राव को आज के भारत में रहते हुए डर लगता है ना, भेजो ऐसे एहसान फरामोशों को फौरन पाकिस्तान। संजय लीला भंसाली को खिलजी पे फिल्म बनाने का शौक है, तो जाओ पाकिस्तान जाके फिल्म बनाओ। और ये जेएनयू के जो अफजल गुरु के हित में नारे लगाते रहते हैं, इन सब को भी फौरन रवाना करो पाकिस्तान। वंदे मातरम ना गाने वाले सब देशद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ। ये पाकिस्तान नहीं भारत है, यहाँ लव जहाद नहीं चलेगा। यूपी के स्कूलों में पढ़ने वाले मुसलमान बच्चों को उनके क्लास फेलोज कहते हैं, अबे वो पाकिस्तानी यहाँ क्या कर रहा है। जिसे हिंदुत्व पसंद नहीं या जिसे मोदी जी नहीं भाते, वो सब पाकिस्तान चले जाएं। अच्छा तो तू देसी गर्ल होके अमरीकी टीवी में चंद डॉलरों के लालच में किसी हिंदू को आतंकवादी कह के देश से गद्दारी करेगी। अरे यो प्रियंका, पाकिस्तान में जाके बस जा, फिर जो मर्जी वाही तवाही करती फिर। वापस मुंबई में कदम नहीं रखने का, सुन रही है ना तू। मेरा दोस्त अब्दुल्ला पनवाड़ी, जिसे 24 घंटे टीवी देखने की बीमारी है, वो ऐसी खबरें सुन सुन के मेरा सर खाता है। कल फिर मुझे रोक लिया, भाई जी जरा समझाओ तो ये भारत में लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या ये वाकई सबको पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। प्रियंका, शाहरुख, आमिर वगैरह तो ठीक हैं, पर भाई जी कहीं ये लोग अडवाणी जी को तो पाकिस्तान नहीं भेज देंगे, जिन्होंने कराची में जिन्ना के मजार पर हाजिरी दी, और वाजपेयी जी को कहीं उसी बस में तो नहीं बिठा के हमारी तरफ हकाल देंगे जिससे उतर के वो सीधे लाहौर में मीनार पाकिस्तान गए थे, जहां 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे की मांग का प्रस्ताव पेश किया था। भाई जी नेहरू जी की अस्थियां तो पाकिस्तान नहीं भेज देंगे, जिन्होंने 6 में से 3 दरियाओं पर पाकिस्तान का हक मान लिया था। मैंने अब्दुल्ला को तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होने का, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ये सब सियासत चमकाने का चक्कर है। मोहब्बत को कोई वीज़ा नहीं देता और नफ़रत को वीज़े की ज़रूरत नहीं। इस पे अब्दुल्ला ने सर हिलाते हुए कहा, बात अपने पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी भाई जी, पर बात आपने बहुत बढ़िया करी है।
वसतुल्लाह खान की डायरी आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। और अब साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में पहले तो आइसलैंड ने अर्जेंटीना को 1-1 से बराबरी पर रोककर उसे हैरान किया, लेकिन कल तो ग्रुप एफ के मुकाबले में मेक्सिको ने पिछली चैंपियन जर्मनी को 1-0 से हराकर उसके समीकरण ही बिगाड़ दिए। दुनिया की नंबर 1 टीम जर्मनी के तमाम खिलाड़ी तब हक्के बक्के रह गए जब मेक्सिको के लोजानो ने खेल के 35वें मिनट में गोल ठोक दिया, जो अंततः निर्णायक भी साबित हुआ। With the defender, and he brings in Lozano, and Lozano shoots! कल ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में ग्रुप ई में शामिल सर्बिया ने कोस्टारिका को 1-0 से हराया। आज ग्रुप जी में बेल्जियम का सामना पनामा से और ट्यूनिशिया का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके अलावा ग्रुप एफ में स्वीडन का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। और अब समीक्षा, आखिरकार कब तक छोटी मोटी टीमों को हराकर घर में यूं ही कोई फुटबॉल टूर्नामेंट जीतकर भारत खुश होता रहेगा और कब तक फीफा रैंकिंग में भी पिछड़ा रहेगा।
Well, first of all, really happy. that we have won, and we really worked hard for this. We well deserved it. Collective effort and really happy for the boys.
ये शब्द है भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के, जो तब बेहद खुश हुए जब पिछले दिनों भारत ने अपनी ही मेजबानी में इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। फाइनल में भारत ने कीनिया को 2-0 से हराया। कीनिया की फीफा रैंकिंग 112वीं है और जबकि भारत की 97। इसके अलावा न्यूजीलैंड और चीन ताइपे की टीम भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा थी। न्यूजीलैंड की फीफा रैंकिंग 120वीं और चीन ताइपे की 123वीं है। भारत ने फाइनल से पहले चीन ताइपे को 5-0 से और कीनिया को 3-0 से हराया, लेकिन न्यूजीलैंड से 2-1 से हार भी गया। जाहिर है भारतीय टीम ऐसे रिकॉर्ड से संतुष्ट नहीं हो सकती। वैसे भारत अपनी ही मेजबानी में इससे पहले साल 2007, 2009, 2012 और 2017 में नेहरू कप जीत चुका है, लेकिन इस दौरान साल 1982 से 1997 तक हुए नेहरू कप में भाग लेने वाली उरुग्वे, चीन, दक्षिण कोरिया, कैमरून, युगोस्लाविया, जर्मनी, पेरू, हंगरी और इराक जैसी दमदार टीमें नहीं आई, और जब तक ये टीमें आई तब तक भारत को भी खिताबी जीत हासिल नहीं हुई। फुटबॉल समीक्षक नोवी कपाड़िया कहते हैं,
देखो पहले जो नेहरू कप में टीमें आती थी, अब वो कैलिबर की टीमें है नहीं। देखो चाइनीज ताइपे में फुटबॉल कोई लोकप्रिय खेल नहीं है, न्यूजीलैंड में भी वहाँ रग्बी क्रिकेट मिडिल डिस्टेंस रनिंग ज़्यादा लोकप्रिय, और न्यूजीलैंड ने अपनी सेकंड टीम भेजी है। कीनिया एक ऐसा अफ्रीकन देश है जहाँ मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एथलेटिक्स ज़्यादा लोकप्रिय है, तो कीनिया भी फुटबॉल के लिए तो जाना नहीं जाता। हमने नेहरू कप में कुछ 20-21 साल पहले तब 80,000 लोग थे, जब भारत और चीन का मुकाबला, भारत और इराक का मुकाबला, उज़्बेकिस्तान के साथ मुकाबला।
अब कमजोर टीमों को हराकर खिताब जीतना भारत की रणनीति बन चुकी है, जिससे बहुत खुश नहीं रहे भारत के पूर्व कप्तान बाईचिंग भूटिया।
इंटरनेशनल मैचेस में आई थिंक इंडिया के जितना भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं वो इंडिया के अंदर रहा है, आउटसाइड इंडिया का इतना अच्छा रिकॉर्ड्स नहीं है, तो इसलिए जितना हो सके हम लोग को बाहर में टूर्स रहना चाहिए और बाहर में मैचेस खेलना चाहिए।
बाईचिंग भूटिया ने ये बात साल 2009 में नेहरू कप जीतने और अपना 100वां मैच खेलने के बाद कही, जिसके बाद एक सवाल के जवाब में उन्हीं दिनों भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने ये कहा था,
जब हमारा खेल सुधरेगा, हमारा रैंकिंग सुधरेगा, तभी दूसरी टीम्स को भी इच्छा होगी कि हमारे यहाँ पर आकर वो खेलेंगे। रातों रात कोई छलांग एक साथ में होगी ऐसा मानना भी मुश्किल होगा, इसीलिए कमिटमेंट के साथ ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है ऐसा मानना होगा।
कमाल की बात है कि लगभग एक दशक बाद आज भी वैसे ही सवाल हैं। अगर ऐसी ही कमिटमेंट के साथ ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो फिर भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में कामयाब होने के लिए कितना समय लगेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उधर अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल भारत के अजय जयराम छठी वरीयता हासिल नीदरलैंड्स के मार्क कोजू से 21-13, 23-21 से हार गए। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें। उससे पहले एक बार फिर समाचार कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार। अफगान तालिबान ने ईद के लिए घोषित किए गए 3 दिन के संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान से संघर्ष विराम की मियाद बढ़ाने की अपील की थी। कोलंबिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता इवान डुके जीत गए हैं। उन्हें 54% वोट मिले हैं। डुके पिछली सरकार के मार्क्सवादी विद्रोहियों के साथ किए गए शांति समझौते के पक्ष में नहीं हैं। अब इस समझौते के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। रूस में हो रहे फुटबॉल विश्व कप में सभी को हैरान करते हुए मैक्सिको ने मौजूदा चैंपियन जर्मनी को 1-0 से मात दे दी। जर्मनी 4 बार विश्व कप विजेता रह चुका है और मैक्सिको ने 1 बार भी विश्व कप नहीं जीता है। लीबिया के नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन ने रास लानुफ में स्थित पूर्वी बंदरगाह पर लगातार जल रहे 2 बड़े तेल भंडारण टैंकों के चलते पर्यावरण संबंधी खतरे की चेतावनी दी है। एक लड़ाई के दौरान इन टैंकों में आग लग गई थी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया देवाशीष कुमार ने और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अनंत अवस्थी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम के 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। तब तक आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। फिलहाल सभी साथियों समेत मानसी दास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।